आदरणीय डॉक्टर सविता बहन जी का आज के सभा में एक हाथ की ताली से बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता बहन डबल डॉक्टर है और आपका मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है जो यज्ञ में आते ही आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग एक डॉक्टर होने के नाते लंबा समय साथ रहने का सौभाग्य मिला है। वैसे मधुबन में आप अभी मल्टीफोल्ड सेवाएं कर रही हैं, एक सशक्त वक्ता के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में अपने वक्तव्य से अनेकों को लाभान्वित भी कर रही हैं, चाहे वो शिविर हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो भट्टिया हो, तो अपनी विशेषता को अनेक स्थानों पर आप यूटिलाइज करके अनेकों को अपना लाभ दे रही हैं। साथ ही जब से आपने वुमेन्स विंग में मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यभार संभाला है, आपने उस विंग को भी बहुत एक्टिवेट कर दिया है। अभी पिछले 2 सालों के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी सविता बहन जी ने बहुत बहुत कार्य किया है और अवार्ड की भी अधिकारी बनी है, तो अपने क्षेत्र में आपका योगदान बहुमूल्य योगदान है। आज एक बड़े पुरुषार्थ के हिसाब से गहरे विषय पर हमें डॉक्टर सविता बहन क्लास कराएंगी। हमने बट्टी का लक्ष्य रखा है बाप समान स्थिति, और ऐसी स्थिति के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या हो सकता है। ब्रह्मा बाबा की विशेषता रही सदा समाधान स्वरूप, और ऐसी स्थिति के लिए बाबा ने शक्ति को यूज किया साइलेंस बल। तो ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है उनमें से एक है समाधान स्वरूप स्थिति। तो आज इस विषय पर हमें आदरणीय डॉक्टर सविता बहन क्लास कराएंगी। डॉक्टर सविता
ओम शांति। ओम शांति। सभी यहाँ 2 दिन से पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सहज ही अभी बाबा समान स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, योग अपने आप लगता है, ऐसा महसूस करते हैं हा? तो अपने आप ही शांति की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, बाबा के प्यार का अनुभव, आनंद का अनुभव सभी कर रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे तो ये भी बहुत पद्मा पदम भाग्य है कि पांडव भवन में भट्टी करने का भाग्य मिला है। और जब हम साइलेंस की शक्ति की बात करते हैं या समाधान की बात करते हैं, तो हम सब का एक मंत्र तो पहले आपस में मिलते हैं, ओम शांति है ना? और ओम शांति हमें तीन स्वरूप की स्मृति दिलाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। तो यदि हम स्वरूप में स्थित होकर के ओम शांति कहते हैं तो मन नेचुरल ही शांत हो जाता है। तो शांति हमारा स्वभाव है, ये बाबा ने हमें रियलाइज कराया। हम 24 घंटे शांत रह सकते हैं, वो सहज है। अशांति 24 घंटे अशांत रह सकते हैं वो मुश्किल है, ऐसा ही कहेंगे। तो इसका मतलब शांति की शक्ति हमारी अपनी शक्ति है। तो हम शांत रहते हैं और बाबा के बच्चे होने के कारण और भी हमारी शांति अधिक है। अन्य आत्माओं की तुलना में हम मन की शांति का सहज अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई समस्याओं में मन अशांत हो जाता है। समस्याओं में भी मन अशांत न हो तब हम कहेंगे कि हमारे ज्ञान से हमने अपनी उन समस्याओं में भी शांति पाने की विधि सीख ली है। अगर हम अभी भी अशांत हो जाते हैं तो इसका मतलब ज्ञान तो है, समझा तो है, जाना तो है, लेकिन अभी तक वो हमारे स्वरूप में नहीं है। क्योंकि शांति में शांत रहना ये तो दुनिया वाले भी कर लेते हैं, मुख्य बात तो क्या है, अशांति में शांत रहने की है, ऐसे ही कहेंगे। तो अशांत करने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी आती हैं, बोलिए, सुन रहे हैं ना? दो दिन से वैसे भी ज्ञानी बच्चे हैं बाबा के सभी। कौन कौन सी अशांत करने वाली परिस्थितियां आती हैं जी? देह अभिमान। अब देह अभिमान किस रूप में आया? देह अभिमान एक जनरल टर्म है ना, लेकिन उसको हम स्पेसिफाई करें कि कैसे देह अभिमान आया तो हम मन अशांत हो गया। मैं जो कह रहा हूं वो राइट है, मेरी बात नहीं मानी, ऐसे नहीं मानी तो हम अशांत हो गए, बिल्कुल सही। और अव्यर्थ संकल्प क्यों आए? बिना कारण के आए या कारण से आए? कौन सा कारण बना जो व्यर्थ संकल्प आए? दूसरों की गलती देखी तो व्यर्थ संकल्प आए, ठीक है। और अचानक कोई परिस्थिति आ गई, ठीक है, अचानक कोई भी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, किसी ने हम पे गुस्सा कर दिया ना, मतलब ऐसे ही हुआ ना, किसी ने ऐसा शब्द हमको बोल दिया जो बुरा लग गया हमको। अब वो कब ऐसे शब्द बोलते हैं? जब लोग गुस्से में होते हैं। नॉर्मली तो नहीं बोलेंगे कोई भी ऐसा, लेकिन उनको हमसे जब किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, हम उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे या हम उनकी बात नहीं मान रहे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे मेरी बात नहीं मान रहे वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी किसी की बात नहीं मान रहा है ना, उसको हम देह अभिमान बोलेंगे जैसे। तो ये भी मन को अशांत करता है। अच्छा, और इच्छा पूरी नहीं होती है। हाँ जी, किसी ने अपमान कर दिया ना? अब इन सब परिस्थितियों का समाधान है हमारे पास कि नहीं है? बाबा ने ज्ञान से हम सबको समझा रखा है कि इन परिस्थितियों में क्या करना है। देखो ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही प्रकाश है, बाबा ने कहा। तो अगर मुझे पता है कि इन परिस्थितियों में मुझे ज्ञान को यूज करना है तो मैं अपने मन को शांत कर पाऊंगी, और अगर मैंने ज्ञान को यूज नहीं किया तो अशांत, जैसे और अशांत होते हैं ऐसे मैं भी अशांत। तो अब ज्ञान को यूज कैसे करेंगे, ज्ञान को यूज कैसे करेंगे? मानो कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, सबसे ज्यादा बुरा इंसान को तब लगता है जब कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, या किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी चार लोगों के सामने, मेरी कमी निकाल दी। बहुत अधिक अशांति लंबे समय तक चलती है इसके कारण। अब वो कितने दिन चलती है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, जब तक मेरे मन से वो बात नहीं जाएगी तब तक मेरा मन अशांत रहेगा। अब इसमें हम ज्ञान से कैसे मन को शांत करेंगे, क्योंकि दूसरे को तो मैं नहीं बदल सकती, उसको मैं कहूं तुम गुस्सा मत करो तो वो बदल जाएगा। तो मुझे अपने आप को ही समझाना है। क्या समझाएंगे अपने आप को? हाँ, वो परवश आत्मा है, उस आत्मा पर अभी तमोगुण का प्रभाव है, क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं तो आत्माओं में कभी कभी पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अब वो ज्ञानी भी हो सकती है, अज्ञानी भी हो सकती है। अगर वो ज्ञानी आत्मा है तो उसका पुराना संस्कार इमर्ज हुआ, हाँ, तो अभी वो परवश है। तो मेरा कर्तव्य क्या है उस समय? हाँ, मेरा कर्तव्य है उसके प्रति रहम की भावना, शुभ भावना, उसको शांति का दान देना है, मुझे देना है। अभी उसको शांति की जरूरत है। अगर मैं भी गुस्सा करती हूं तो मैंने आग में घी डाला, लेकिन अगर हम शांत रह गए, अगर हम चुप रह गए तो हमने क्या काम किया? फायर ब्रिगेड का काम किया। हाँ, पानी, फायर ब्रिगेड क्या करती है? आग बुझाती है। तो मुझे क्रोध की अग्नि को बुझाना है, मुझे क्रोध की अग्नि को बढ़ाना नहीं है। पर क्या मैं शांत रह पाती हूं ऐसी स्थिति में? हाँ, ये अपनी चेकिंग है। या हम ही भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, हम ही भूल जाते हैं और हम भी उनके रंग में रंग जाते हैं। हाँ, ये अपने आप को चेक करना है। तो यदि हम कर पाते हैं, अगर उस समय मुझे स्मृति आई, वो तब आएगी जब मैंने ज्ञान का मंथन किया है, ज्ञान को अपना बनाया है, सिर्फ सुना नहीं है। अगर मैंने सालों से सिर्फ मुरली सुनी है, नियम है ब्राह्मणों का रोज मुरली सुनना है, आकर के क्लास में बैठे मुरली सुने, बहुत खुश हुआ, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, घर में गए सब खत्म। अगर हमने ऐसे ज्ञान सुना है तो वो काम नहीं करेगा टाइम पर, करेगा? हम भी गुस्सा गुस्सा कर जाएंगे, दो चार बोल जाएंगे, फिर याद आएगा, अरे ये मैंने क्या किया, हाँ मुझे तो ऐसा नहीं बोलना था, मुझे तो शांत रहना था, मुझे तो सहन करना था। कब याद आया? जब टाइम निकल गया। इसका मतलब हम फेल हो गए, उसके बाद पास होने का विचार आ रहा है। लेकिन अगर मैंने अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं, ये मुझे उसी समय याद आ जाना चाहिए जब कोई ऐसी परीक्षा मेरे सामने आ रही है। पेपर के बिना हम पास नहीं होने वाले। कोई पेपर आएगा तब तो पता चलेगा मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति है, या भगवान हमको बिना पेपर लिए मार्क्स दे देगा, क्या कहेंगे? बिना पेपर लिए मार्क्स मिल जाएंगे क्या? तो मेरी शांति की शक्ति ऐसी स्थिति में काम करे। अब कोई मेरा अपमान कर रहा है मानो, या मेरी निंदा करता है, मुझे पता चलता है तो हमें पता है कि वो मेरी निंदा कर रही है आत्मा, जरूर मैंने भी कभी उसकी निंदा की होगी, क्योंकि कर्म ही मेरे सामने आ रहा है ना? तो फिर हम शांत रह सकते हैं, ठीक है हिसाब किताब पूरा हो गया, अभी हमें सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू करने हैं। यदि मेरा कर्ज समाप्त होता है तो हम हल्के हो जाते ना। लेकिन यदि मैंने भी दुर्भावना रख करके उसकी ग्लानी कर दी, मुझे पता चला उसने मेरी ग्लानी की तो मैंने भी चार बोल दी, हाँ वो क्या समझते अपने आप को, वो भी तो ऐसे हैं, तो क्या किया मैंने? ज्ञान को यूज नहीं किया। क्या किया? उस हिसाब किताब उस कर्म बंधन को मैंने और ही 100 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि ज्ञानी आत्मा होने के बाद यदि मैंने फिर से वो गलती की तो 1 का 100 गुना प्राप्ति तो पदम गुना है। बाबा ने कहा बाबा के श्रीमत अनुसार चले तो पदम गुना प्राप्ति हो गई, और श्रीमत का उल्लंघन कर दिया तो 100 गुना दंड भी पड़ गया। तो रोज मुझे इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें उस ज्ञान का मंथन करके उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। और यदि मैंने साइलेंस की शक्ति का प्रयोग किया तो फिर हम अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। वृत्ति के द्वारा हम अन्य आत्माओं की वृत्ति को भी चेंज कर सकते हैं। वो सूक्ष्म सेवा है, भले हमें दिखाई नहीं देती। बाबा जैसे मनसा सेवा कहता है तो ये मनसा सेवा ही है। साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही हम मनसा सेवा करते हैं, लेकिन मेरी मनसा इतनी पावरफुल हो, अगर मेरी मनसा इतनी पावरफुल नहीं है, अगर मैं छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी समस्याओं में अपने मन की शक्ति को गंवाती हूं, जैसे कहा व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किन्हीं बातों में हम सहन कर लेते हैं मानो, लेकिन सहन सिर्फ बाहर की रीति से मैंने कर लिया लेकिन मेरे मन से सहन नहीं हुआ तो क्या होगा? किसी ने मुझे कहा तो मैं चुप तो रह गई, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में मन अशांत हो गया। अब अंदर में मैं फीलिंग में आ गई, अंदर में मैं दुखी हो गई, तो अब मैं क्या कर रही हूँ? उस बात को सोच सोच के अपने मन की शक्ति को कमजोर कर रही हूँ। कई बार लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी क्या है? अपने आप से निराश हो जाना। अब बाबा से योग नहीं लग रहा तो बाबा से शक्ति भी नहीं मिल रही, और मेरे मन की शक्ति तो जा रही है तो क्या होने वाला है? खुशी गुम होगा तो मूड ऑफ होगा, फिर किसी काम में मन नहीं लगेगा, उमंग उत्साह जीवन का समाप्त हो जाएगा, क्या लगेगा जैसे कि बोझ उठा के चल रहे हैं। मन की दशा कैसी है? और अगर ऐसी आत्मा सोचे अब मैं मनसा सेवा कर लूं तो काम करेगी? अब मेरा मन का बल्ब कितना काम कर रहा है? 0 वॉट जितना। खुद ही डिस्चार्ज है तो दूसरों को क्या चार्ज करेंगे? एक होता है 1000 वॉट का बल्ब, एक होता है लाइट हाउस। 1000 वॉट का बल्ब एक पूरे मैदान में रोशनी कर सकता है, इतनी पावर है उसकी, और लाइट हाउस मीलों तक रोशनी फैला सकता है। जो इतने मीलों दूर जहाज है उसको भी वो गाइड करता है कि यहाँ किनारा है, ठीक है। और 0 वॉट का बल्ब सिर्फ एक कमरे में हल्की सी रोशनी, इतना कि बस हमें दिखाई दे जाए, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मैं लाइट हाउस बनी हूं। लाइट हाउस बनने का मतलब समझते हैं ना? बाबा से लाइन पूरी क्लियर है एकदम। बाबा को याद किया और मन बाबा से जुड़ा, और मास्टर सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियां मैं अपने में महसूस करती हूँ, और फिर जिस आत्मा तक हम वो वाइब्रेशन देना चाहते हैं, उसे शांति का अनुभव कराना चाहते हैं, उसमें हिम्मत लाना चाहते हैं, उसमें उत्साह लाना चाहते हैं, उस आत्मा को बाबा का संदेश देना चाहते हैं, जो भी हम मनसा सेवा किसी भी आत्मा के प्रति करना चाहते हैं, चाहे उसे बीमारी में सहयोग देना चाहते हैं, वो भी हम कई बार ब्राह्मण करते हैं। कई बार आपको क्लास में कहते हैं देखो फलाना बीमार है तो हमें क्या करना है? योगदान करना है। लेकिन कब कर पाएंगे? भले ही हम खुश हो रहे हैं कि हाँ मैंने योगदान दिया, लेकिन मेरा योगदान उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अब कब पहुंचेगा समझ में आएगा? जब मेरी स्थिति लाइट हाउस के समान होगी, जब मेरा मन निस्वार्थ है, जब मेरा मन नेगेटिव से मुक्त है, मेरे मन में सदा ही उन आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं, ऐसे नहीं मेरी भावनाएं बदलती रहती हैं, ये साइलेंस पावर तब काम करती है। कभी तो मेरा मन उस आत्मा के प्रति शुभ है और कभी कभी बदल जाता है। उसने अगर मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया या हमारे स्वभाव संस्कार कहीं टकरा जाते हैं तो मेरे भी भाव उसके प्रति बदल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं मनसा सेवा तो करते हैं लेकिन कुछ परिणाम तो दिखाई नहीं देता। अब परिणाम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? और ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते हैं, हम इतिहास तो बाबा का सुनते ही हैं, तो बाबा ने सदा ही यज्ञ में रहते हुए विश्व कल्याण की सेवा करते हुए साइलेंस की पावर का प्रयोग किया। बाबा ने इसके लिए अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास किया। अशरीरी स्थिति माना निराकारी स्थिति, देह में रहते हुए देह से न्यारे, तब आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं स्वतः ही। जैसे देह अभिमान विकारों की जड़ है, हम कहते हैं ना देह अभिमान में रहे तो कब संस्कार इमर्ज हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हम सोचेंगे कि हाँ मैंने तो इस संस्कार पे बहुत काम किया था, फिर वापस ये संस्कार कहां से आ गया। क्योंकि हम जैसे ही देह अभिमान में आएंगे फिर से वो शाखाएं पत्ते, जैसे ही परिस्थिति का पानी मिला धूप मिली वो फिर से उग जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं निरंतर आत्मिक स्मृति में भी हम नहीं रह पाते, इसलिए रोज बाबा हमें मुरली में याद दिलाता है। कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा ने ये ना कहा हो कि अपने को आत्मा समझो। होती है कोई दिन, हर दिन वो बात, क्योंकि हम हर दिन भूल रहे हैं। वो 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हैं कि सिर्फ योग के समय याद रहता है मैं आत्मा हूं। उसके अलावा ज्यादातर हम कर्म कॉन्शियस होते हैं। चलो हम दुनिया वालों जितने बॉडी कॉन्शियस तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस की बजाय एक्शन कॉन्शियस हम रहते हैं, और उसका भी प्रभाव आ जाता है। वो कभी अंश वंश में बदल जाता है, हमें भी पता नहीं चलता। तो बाबा ने जो अभ्यास किया वो हमारे जो भी सीनियर हैं वो सुनाते हैं कि कैसे वो बाबा के सामने जब जाते थे पहली बार उनके मिलन का अनुभव क्या रहा। बाबा से दृष्टि मिली और अशरीरी हो गए, शांति की दुनिया में चले गए। सुनाते हैं ना, आज की मुरली में भी था, बाबा ने क्या कहा, भगवान की नजर निहाल करने वाली है। बाबा की दृष्टि पड़ी और हमने वो अनुभव किया। आज भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो बाबा की दृष्टि मिलते ही हम क्या अनुभव करते हैं। तो वो ब्रह्मा बाबा ने अपना स्वरूप बनाया और सभी ने वो अनुभव भी किया। बाबा ने फरिश्ता स्थिति का भी बहुत अभ्यास किया, शरीरी स्थिति के साथ साथ अव्यक्त स्थिति, और इसीलिए संपूर्ण फरिश्ता बने बाबा। जैसे ही बाबा को डायरेक्शन मिला कि संपूर्ण ब्रह्मा ऊपर डबल लाइट स्वरूप में है, ऐसे ही बाबा ने 2:30 बजे उठ करके रोज योग अभ्यास किया। और अब बाबा हमको कहते हैं कि आपस में एक दो को कैसे देखो, साधारण दृष्टि से नहीं देखो, कैसे देखना है एक दो को, कि ये ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं। जब भी हम ईश्वरीय परिवार के संपर्क में आते हैं एक दो को फरिश्ता देखेंगे तो उनकी विशेषताओं पर नजर जाएगी, कमियों पर नजर नहीं जाएगी। आत्मिक दृष्टि भी रहेगी तो विशेषताओं पर नजर जाएगी, क्योंकि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में तो पवित्र है, शुद्ध है, श्रेष्ठ है, कोई भी आत्मा है, वर्तमान स्वरूप कैसा भी है, लेकिन अनादि स्वरूप कैसा है? अनादि संपूर्ण स्वरूप तो बिल्कुल शुद्ध श्रेष्ठ स्वरूप है। तुम साइलेंस की शक्ति माना, मैं आत्मा की वो स्वरूप को देख पाऊं जो अभी वर्तमान में मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसी को हम तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र जो देख सकता है, वो ये दो नेत्र नहीं देख सकते हैं, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही हम वो देख सकते हैं, और कोई नेत्र हमें वो नहीं दिखा सकता। तो उस स्वरूप पर मेरी नजर हो जो संपूर्ण स्थिति है आत्मा की, तो कभी भी उसकी वर्तमान कमियां मुझ पर प्रभाव नहीं डालेंगी। अभी बाबा ने कहा, अभी संडे की मुरली थी ना, वैष्णववंशी आत्माएं कैसी होती हैं? वैष्णववंशी आत्माएं कभी भी किसी के बुराई रूपी अशुद्धि को टच भी नहीं करेंगे। हाँ, टच किया तो क्या हो गए? शूद्रवंशी हो गए। तो बाबा ने तो बहुत अच्छी तरह समझाया कि हम साधारण कर्म भी नहीं कर सकते, व्यर्थ कर्म भी नहीं कर सकते। हमारे कर्म अभी अलौकिक ही होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म ही होने चाहिए, समर्थ कर्म ही होने चाहिए। तो वो तब होंगे जब हम फॉलो फादर करेंगे। बाप समान स्थिति माना, बाबा को फॉलो करना है, आपस में ब्रदर सिस्टर को नहीं देखना है। ब्रदर सिस्टर को हमने देखना शुरू किया, ये इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं, मैं तो अभी 2 साल से ज्ञान में हूँ, अब यही ऐसा करते हैं, मैंने भी ऐसा किया, तो क्या फर्क पड़ता है? कई बार हम निमित्त आत्माओं को भी देख लेते हैं, सिर्फ भाई बहनों को नहीं देखते, निमित्त आत्माओं। अब निमित्त आत्माएं भी तो पुरुषार्थी हैं। बाबा ने भाग्य देने में तो ये अंतर नहीं रखा ना कि निमित्त आत्माओं को ज्यादा भाग्य है और जो सेंटर पर आने वाले जिज्ञासु भाई बहने हैं उनको कम भाग्य है। ये भी मुरली चलाई अभी बाबा ने, त्याग की मुरली चलाई है ना, तो जो पहली मुरली थी उसमें बाबा ने बताया कि चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं चाहे सेंटर पर समर्पित हैं, सभी को एक ही जैसा भाग्य भगवान के द्वारा मिला है। जिस घड़ी जन्म हुआ भगवान के पास कमी नहीं है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है, उस भाग्य को हमने कितना आगे बढ़ाया। भाग्य की लकीर खींचने की कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, तो मुझे जो खजाने मिले उन्हें मैंने कितना यूज किया, कितना सेवा में लगाया और किस विधि से सेवा में लगाया, उस अनुसार ही हमारा भाग्य बढ़ता है। तो हम निमित्त आत्माओं को भी देख करके असंतुष्ट ना हो, लेकिन मुझे किसको देखना है, बनाने वाला कौन है? हम सबको बनाने वाला कौन है? बाबा है। तो निराकार बाप को, शिव बाबा को फॉलो करना है, और साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को, ब्रह्मा बाबा या मम्मा बाबा को हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम जब उनके सुनते हैं इतिहास में जो भी हिस्ट्री सुनते हैं, हम ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में इतने सम्माननीय रहे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध डायमंड बिजनेसमैन थे, कभी किसी ने उनको लौकिक जीवन में एक अपशब्द नहीं कहा। लेकिन जैसे ही बाबा की प्रवेशता हुई और ये सारा कार्य शुरू हुआ, तो सभी ने कैसा व्यवहार किया, जितना हो सके काफी उनका अपमान हुआ और कलंक भी लगाए। सिर्फ अपमान नहीं किया लेकिन बाबा के ऊपर कलंक भी लगाए। लेकिन बाबा कभी भी हलचल में नहीं आए, ना ही कभी संशय में आए, लेकिन उन आत्माओं के प्रति भी बाबा ने शुभ भावना रखी। कभी भी बाबा का निश्चय डगमगाया नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि पता भी नहीं कि भविष्य निश्चित है या नहीं। उस समय तो कुछ भी निश्चित नहीं था, जस्ट यज्ञ की शुरुआत थी, कोई बाबा के सामने आदर्श, कोई रोल मॉडल भी नहीं था। रोल मॉडल समझते हैं ना, आज तो हमारे सामने कितने रोल मॉडल हैं, कितने हमारे भाई बहने हैं जो उस संपूर्ण स्थिति को, कर्मातीत स्थिति को पा चुके हैं। बाबा के सामने कोई नहीं था, तो बाप समान बनना माना हमारे सामने भी ये परीक्षाएं आने वाली हैं। हम सभी भी जब बाबा के बनते हैं तो हमें सुनना पड़ता है समाज में, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो सत्यों की स्थापना के लिए है। तो हमारी दिशा बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि दुनिया तो कलयुग में है, उनकी दिशा और हमारी दिशा ऑपोजिट है। तो उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं समझ में आती तो वो क्या करेंगे हमारे साथ। हाँ, निश्चित रूप से। अब आप सुबह सुबह उठ करके क्लास के लिए आ रहे हो, उनके सोने का टाइम है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, होता है कि नहीं होता? हाँ, तो वो जरूर उठ के गाली देंगे आपको क्यों सुबह सुबह हमारी नींद खराब करते हो, कम से कम सोने दो, सोने का टाइम है। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके आप शुरू हो जाते हो, तो अगर आपने उनको संतुष्ट नहीं किया, उनके पार्ट को समझना है। अगर वो ज्ञान में नहीं चल पा रहे, अभी उनका समय नहीं आया, उनकी बुद्धि का ताला अभी नहीं खुलना है, तो मुझे क्या करना है? हम शांति कैसे दे सकते हैं उनको? जो वो हमारे पुरुषार्थ से अशांत हो रहे हैं, उनको हम शांति कैसे दे सकते हैं? शुभ भावना रखने से काम नहीं चलेगा, कर्म भी ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, सुबह सुबह उठ के उनको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ऐसे काम करो उनको पता भी नहीं चले कि आपने अमृत वेले उठकर योग किया। ऐसे नहीं सुबह सुबह उठकर आपने उन तेज वॉल्यूम में गीत बजा दिए और आपके घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने के बाद आपका योग लगने वाला है? लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझसे पहले उनको शांति मिले वो कोशिश करना है। तो वो फिर विघ्न रूप नहीं बनेंगे आपको। मेरे से पहले उनका ध्यान रखना। अगर मेरे क्लास में जाने से उनको डिस्टरबेंस होता है, तो इस तरह से अपनी सेटिंग करो कि उनको डिस्टरबेंस ना हो, मेरा पुरुषार्थ भी मिस ना हो, और साथ में मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। वो अपना रास्ता हम खुद समझ सकते हैं कैसे हमें निकालना है, कि घर में भी शांति रहे और मेरे पुरुषार्थ को भी मैं शांति से कर पाऊं। तो बाबा ने वो विधि अपनाई, बाबा ने सबको संतुष्ट किया। ऐसे नहीं कि लौकिक वालों को छोड़ दिया, छोड़ा थोड़ी, सबको साथ लेकर के चले। सबका कल्याण किया बाबा ने। जो शादी करना चाहते थे, ऐसे नहीं कि उनको रोका भी। बेटा शादी करना चाहता था तो ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा अब मेरी जो संपत्ति है वो तो ईश्वरीय संपत्ति है, मैंने तन मन धन बाबा को अर्पित कर दिया है। तो फिर बाबा ने अपनी संपत्ति का वारिस नहीं बनाया कि बेटा है तो मेरी संपत्ति पर उसका अधिकार है, नहीं। जिस घड़ी बाबा पर निश्चय हुआ, शिव बाबा पर निश्चय हुआ, उसके बाद बाबा ने कभी भी मैंपन और मेरापन अपनी किसी भी चीज में नहीं रखा। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। कितनी बड़ी अथॉरिटी थी। भगवान जिसके तन में आए उसको अभिमान हो सकता है कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, मेरे तन का आधार लिया है। हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन क्या कहा बाबा ने हमेशा? मैं निमित्त हूं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कहते ना बाबा, मैं बच्चों का सेवाधारी हूं, सेवाधारी बनकर आया हूं। कितनी बार मुरली में हम सुनते हैं बाबा अपने आप को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, और कहा नहीं, व्यवहार में भी बच्चों का सेवक बनकर दिखाया। छोटे छोटे काम भी बाबा ने किए यज्ञ में, स्थूल काम जो यज्ञ के चलते हैं, सब्जी काटना, अनाज साफ करना। उस समय तो गैस नहीं होती थी, आज के जमाने में तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन उस जमाने में तो गैस नहीं होती थी, तो कोयले की अंगीठी जलाई जाती थी और उसमें वो यज्ञ में कभी बेगरी पाठ चला तो वो कोयले की चूरी के वो बनाते थे गोले, तो सब सुना है। तो वो सब भी बाबा ने बच्चों के साथ किया, कर्म करके बच्चों को सिखाया, और ऐसे साधारण कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्थिति रहे। हम सब भी साधारण कर्म करते हैं, घरों में भोजन बनाते हैं, आज सफाई करते हैं, जो भी काम करते हैं हम, कपड़े धुलाई करते हैं। तो ऐसे नहीं कि साधारण कर्म कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए, नहीं, स्थिति श्रेष्ठ रहे। कई बार जब क्योंकि उस समय संदेशियों का पाठ बहुत चलता था, बहुत बहनें थी जो ध्यान में जाती थी, तो सुनाते थे कि ये बहन झाड़ू लगा रही है, अरे ये स्वर्ग की महारानी है, कहाँ झाड़ू लगा रही है। हाँ, वर्तमान में तो वो झाड़ू लगा रही है क्योंकि सेवा कर रहे हैं, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, लेकिन भविष्य स्वरूप क्या दिखाई दे रहा है कि ये तो भविष्य की महारानी बनने वाली है। तो स्मृति सदा ऊंची रहे। जो बाबा ने हमें दिलाई, मैं कौन सी आत्मा हूँ, सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो स्वमान। तो बाबा खुद भी स्वमान में रहे और बाबा ने सबको स्वमान का अनुभव भी कराया। जो भी आत्मा उनके संपर्क में आई, बच्चे बाबा के पास आते थे तो बच्चों को भी बाबा स्वमान का स्नेह देते थे, सम्मान का स्नेह देते थे। यानी सम्मान देते हुए स्नेह देना, ऐसे नहीं बच्चा ही तो है। और कहते हैं कि दादियां उस समय, कई दादियां हमारी उस समय छोटे बच्चे थे, तो बाबा हमेशा उनको कहते थे ये तो मेरे होनहार विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो गुलजार दादी कई बार सुनाती हैं क्लास में, सुनाती रही हैं कि जब बाबा विश्व कल्याणकारी कहते थे तो हमें समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि ये विश्व का नक्शा क्या होता है, विश्व क्या होता है। स्कूल में तो जाकर पढ़े नहीं, बाबा के पास ही आकर पढ़ रहे थे जो भी पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन आज वही दादियां सचमुच भगवान के उन बोलों से वो वरदान बन गए उनके लिए, और ऐसे विश्व के कितने चक्कर लगा लिए उन्होंने। दादी कितनी बार पांचों महाद्वीप में गई होगी गुलजार दादी, कितनी बार, जिसको ये पता नहीं कि विश्व का नक्शा क्या है। तो बाबा ने जितनी ऊंची नजर से देखा उनको, वो नजर या कहें वो बोल, उन्होंने उनका जीवन बना दिया। जैसे बांधेली माताओं को बाबा हमेशा कहते थे याद में नंबर वन है, इनकी जितनी लगन है उतनी जो यहाँ यज्ञ में रहते हैं, सामने रहते हैं, उनकी भी नहीं है। ये कई बार बाबा मुरली में कहता है कि जो यज्ञ में साथ में रहते हैं वो शायद इतना याद नहीं करते जितना जो दूर वाले हैं, जो अमेरिका से आएंगे, दूसरे कोने से आएंगे, उनकी लगन यानी मन से वो बाबा के जितने समीप हैं शायद हम इतने समीप नहीं होंगे। तो लगन में मगन होना वो पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्थिति है, कि मन बाबा की याद में लवलीन हो जाए। और बाबा हमेशा इसी तरह से बाबा को याद करते थे, यानी एक एकांत हम कहते हैं ना, तो एक के अंत में खो जाना, शिव बाबा के सिवाय कोई दिखाई ना दे, एक बाबा ही मेरी नजर के सामने है। परम धाम में हम शिव बाबा को जब पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के याद करते हैं, से हम ज्वालामुखी योग की स्थिति कहेंगे या बीज रूप स्थिति कहेंगे। उस स्थिति में हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, वो योग की पावरफुल स्थिति है जो हमेशा नहीं होती है। जब हम ऐसे भट्टियां करते हैं, जब आप सभी बातों से फ्री होकर के सिर्फ एक बाबा की याद में बुद्धि है, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं भाई बहनों के लिए, ताकि योग की हम ऊंची से ऊंची स्थिति, पावरफुल स्थिति का हम अनुभव कर पाएं और अपने जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध करें। जब तक ज्वालामुखी योग नहीं है, यानी योग अग्नि नहीं है, ऐसे हमने कर्म योगी बनकर के योग लगाया या हमने साधारण रू रिहान किया, हम योग में बैठते हैं नॉर्मली कैसे योग करते हैं, सारे दिन की बातें इकट्ठी हुई हुई होती हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है सारे दिन में, आप किससे करेंगे, हम योग में बैठकर क्या करते हैं, फिर बाबा से बातें करते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये किया, हाँ बाबा ये गलती हो गई, हाँ हम सॉरी बोलते हैं, या जो भी, ये पावरफुल योग नहीं है, ये सिर्फ आप अपना हिसाब किताब ठीक कर रहे हैं, अपना चार्ट दे रहे हैं बाबा को, ऐसा कहेंगे हम, मैंने चार्ट दिया, अपना चार्ट क्लियर किया बाबा के साथ, संस्कार नहीं बदलते इससे। लेकिन जब हम योग अग्नि में उसको भस्म करते हैं तब हम महसूस करते हैं कि अब मेरे मन की स्थिति बदली है, और वो जो गहरी शांति डीप साइलेंस का हमें अनुभव होता है वो भी हमें बीच रूप स्थिति में अनुभव होता है। और इसीलिए बार बार बाबा हमें कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और शारीरिक स्थिति का भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम सोचते हैं नहीं हम लास्ट में बना लेंगे ना, जब समय आएगा, मुझे तो पता है ना मैं आत्मा हूं तो मैं आत्मिक स्थिति में अपने आप को स्थित कर लूंगी, हो जाएंगे। अभी से वो अभ्यास करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जब ऐसी हिलाने वाली परिस्थितियां आती हैं तब मेरा मन उस हलचल में अचल रहे, क्योंकि अंत में तो बहुत ज्यादा हिलाने वाली होंगी, अभी तो कोई हिलाने वाली है। कई बार ऐसे होता है मैं शांत हूं लेकिन कोई दूसरा अशांत है, उसकी अशांति का असर मेरे ऊपर आ रहा है, होता है ना, कोई दूसरा टेंशन में है वो मुझे टेंशन में ला रहा है, मेरे को टेंशन नहीं है लेकिन दूसरे के टेंशन को देखकर, दूसरे के दुख को देख करके मेरी स्थिति खराब हो रही है, होता है नहीं होता, दुनिया में के समाचार सुनते हैं, ऐसे ऐसे समाचार सुन के मुझे टेंशन हो रहा है, तो होना चाहिए, तो इसका मतलब अचल स्थिति नहीं बनी, क्योंकि अभी तक हमने समझा नहीं कि दुनिया में ये सब तो बढ़ने वाला है। और कभी कभी जब बीमारी की स्थिति होती है, कर्म भोग हमारे सामने आते हैं, वो भी मन को अशांत करते हैं। तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे कर्म भोग को कर्म योग से चुप्त किया, हमेशा सूली से कांटा बनाया, ऐसे नहीं बाबा को बीमारियां नहीं थी, बाबा कभी भी मुरली सुनाते सुनाते बहुत खांसी आती थी तो बाबा क्या कहते थे, ये खांसी तो मेरी सखी है, आप 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, मैं शिव बाबा को कई बार कहता हूँ लेकिन शिव बाबा कहते हैं मैं भी इसमें क्या करूंगा, ये तो तेरे हिसाब किताब है, सुनते ना मुरली में, तो हम ऐसे ना कहें बाबा मैं बीमार हुई तो मेरा इलाज कर दो, कहते हैं पता है ये मेरे ही कर्मों के हिसाब किताब हैं जो तन के रोग के रूप में भी आ सकते हैं, कई तरह से आते हैं, तो एक तरह ये भी है कि तन के रोग के रूप में आएंगे वो, तो मेरा हिसाब किताब मुझे ही चुकतू करना है। लेकिन हाँ ये बाबा ने विधि बता दी है कि अगर वो सूली की तरह रोग है तो आप उसको कांटा कैसे बना सकते हो, बना सकते, बहुत दर्द हो रहा है, और मैंने बाबा को याद किया अशरीरी स्थिति में, तो बाबा कहता है वो अशरीरी स्थिति आपके दर्द का इंजेक्शन हो जाएगी, वो दर्द आपको ज्यादा फील नहीं होगा ना, आपको आराम आ जाएगा, जल्दी आराम आ जाएगा। ऐसा बहुत कईयों का अनुभव है, हमारा खुद का भी अनुभव है कि जब हम याद में होते हैं तो बीमारी का दर्द हमें उतना महसूस नहीं होता और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आज इतना मेडिकल साइंस डेवलप है कि शरीर की बीमारियों के सहज इलाज भी हैं। इसीलिए बाबा कहता है जो दवाइयां हैं वो ड्राई फ्रूट हैं। अगर डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ, लेकिन जो भी डॉक्टर हैं उनके पास टाइम पर चले जाओ और दवाई खा लो, ठीक हो जाओ, एक तो सहज तरीका ये है। पर कई बार असाध्य बीमारी होती है, असाध्य बीमारी का मतलब समझते हैं ऐसी बीमारी जो दवाई से इतना जल्दी जाने वाली नहीं है, लंबा समय शरीर को रहने वाली है, उसको भी हम बीमारी होते हुए भी मुझे बीमारी का अनुभव ना हो, क्योंकि आत्मा स्वस्थ है, ये शरीर की बीमारी है ना, आत्मा स्वस्थ है। अगर मैं बीमारी का बहुत वर्णन नहीं करती हूँ, बीमारी को बहुत फील नहीं करती हूँ, अगर हम मन में ये भाव रखते हैं कि मैं आत्मा स्वस्थ हूँ तो मेरा शरीर भी स्वस्थ होने वाला है, ये बीमारी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उस समय हम कैसा सोचते हैं, कोई लोग बीमारी को बहुत सोचते हैं, ना सिर्फ सोचते हैं लेकिन वर्णन भी करते हैं, दूसरे को जिसको भी मिलेंगे, होगा थोड़ा सा सिर दर्द, 10 बार बोल देंगे दिन में, सिर दर्द हो रहा है, बहुत कमर दुख रही है या बहुत टांग दुख रही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने बार बार वर्णन किया तो क्या होगा, क्या होने वाला है, बढ़ जाएगा, क्योंकि बीमारी कॉन्शियस हो गए, सोल कॉन्शियस होने की बजाय बीमारी कॉन्शियस है, सारा दिन बुद्धि में बीमारी बीमारी चल रही है, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये कैसे आ गई बीमारी, मेरे को क्यों लग गई, डॉक्टर से भी जाके ये पूछेंगे ये क्यों हो गया मुझे। तो ये सब क्यों क्या में न जाकर, विस्तार में न जाकर उसको फुल स्टॉप लगाना है, और वो फुल स्टॉप बाबा की याद से, और जितना हम मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में होकर कई बार अपनी बीमारी को भी हम वाइब्रेशंस देते हैं, शांति के वाइब्रेशंस देते हैं, वो सीखा हुआ है, अपने डॉक्टर सिखाते हैं, जो बताते हैं हर एक अंग के लिए अलग अलग वाइब्रेशन है, अगर फेफड़ों की बीमारी है तो शांति के वाइब्रेशंस, अगर हार्ट की बीमारी है तो लव के वाइब्रेशंस, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है तो सुख के वाइब्रेशंस, और यदि मांसपेशियों की हड्डियों की बीमारी है तो शक्ति के वाइब्रेशंस। तो बाबा की याद में वो स्वयं में अनुभव करते हुए हम अगर उस अंग को, जो अंग हमारा बीमार है उसको हम वो वाइब्रेशंस देते हैं तो वो भी हीलिंग में मदद करता है, दवाई के साथ साथ दुआ, इसको कहा दवा और दुआ साथ में, ऐसे नहीं दवा छोड़ दी और केवल हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो केवल वाइब्रेशन से भी ठीक नहीं होने वाला, केवल दवा से भी ठीक नहीं होने वाला, दोनों चाहिए, मन भी हील हो, मन की भी हीलिंग है और तन की भी हीलिंग, तमो प्रधान तत्व है तो शरीर अब उतना पवित्र तो नहीं है कि बिना उसके दवाई के ठीक हो जाए, तो उसको रिपेयर होने के लिए जो हमें तत्व चाहिए वो तो हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, जो पॉजिटिव हीलिंग है, वो हमारी बीमारी को सहज समाप्त कर देती है। और ये बाबा ने प्रयोग दूसरों पर भी किए, विश्वरतन दादा जो थे वो आप सभी जानते हैं, यज्ञ के बहुत फाउंडेशन आधार मूरत थे वो, और उनका ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, और उन्होंने बाबा को बोला, बाबा मुझे बहुत दर्द है, नींद नहीं आ रही है, कितने दिन हो गए मुझे नींद नहीं आई है, तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे तुम आज रात अच्छी तरह सोओगे, और खास बाबा ने रात भर बैठ करके उनके लिए योग लगाया, और वहां उनको बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, तो बाबा के योगदान से, बाबा की उस पावर से उस आत्मा को सहयोग मिला, और ऐसे ही हमें भी, हम बाबा के बच्चों को भी करना है कि हम अपने खुद का भी हीलिंग कर सकते हैं और दूसरों की हीलिंग में भी हम उनको वाइब्रेशंस देते हैं, सहयोग देते हैं तो उनको मदद मिलती है। अब ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स हैं, अगर वर्णन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन रोज हमें जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, बाबा ने जो हमें उसके लिए ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की पॉइंट को हम यूज कर लें। जैसे ही हम यूज करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने यूज किया, हमें तुरंत शांति मिल जाएगी, हमें तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा, और हमने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद भी है, बाबा की श्रीमत को यूज करने की हिम्मत रखी ना मैंने, तो बाबा की मदद उसमें समाई हुई है तो हमारे लिए वो खेल हो जाएगा, बहुत सहज लगेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे होगा मक्खन से बाल निकाला, कितनी मेहनत लगती है मक्खन से बाल निकालने में, लगती है मेहनत नहीं। लेकिन अगर बाबा को भूल गए, ज्ञान को भूल गए, तो फिर छोटी छोटी बातें भी हमें उतना ही अशांत करेंगी जितना कि दुनिया वालों को अशांत करती है। ठीक है, ओम शांति।
बहुत सरलता से इतने गहन विषय को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ हमें स्पष्ट किया है। डॉक्टर सविता बहन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।